ਯਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਲ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ,
ਯਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਲ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ,
ਓ ਯਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਲ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ,
ਜੀ ਯਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਲ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ,
ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ।
खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आए हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप के हजूर झुकें, ताकि आज का पैगाम हम सब की रूहों की तरक्की और हम सब अपने लबों से उसका इकरार करने वाले बने। हम खुदा के हजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे और उसकी रहनुमाई को मांगेंगे, जो आसमान और ज़मीन का खालक और मालिक है, जिसने दानियल को अपनी हिकमत से नवाजा और वो भेद उस पर जाहर किए जो इंसानी सोच से बहुत ही गहरे थे। सो आए दुआ करें ताकि खुदा हम सबको भी हिकमत और दनाई दे। हम दुआ करेंगे। मसीह यीशु में आसमानी बाप, मैं इस लायक नहीं कि तेरे हजूर खड़ा भी हो सकूं। ये मेरी कोई खास बात नहीं कि मैं रास्तबाज हूं, बल्कि ये तेरी रास्तबाजी है जो हम सबको इस लायक बनाती है कि तेरी हजूरी में जब चाहें आ सकते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद, आज का कलाम मेरे लबों में से जो खुदाऊं खुदा गुजराना जाए, बोला जाए, सुनने वाले एक एक बेटे बेटी के लिए, और जो हौसला छोड़ चुके हैं, जो बोलना छोड़ चुके हैं, जो तेरी गवाही नहीं देते, उन सब के लिए बरकत का बायस हो। सो आज के कलाम के वसीला से हम सबको हिकमत और दनाई दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में उस 11वें मौजजे पर गौर करेंगे। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को जो 12 बरस से बीमार थी, जिसे खून जारी था, बहुत से हकीमों, बहुत से डॉक्टरों, बहुत से लोगों के पास वो गई। उसने अपना रुपया पैसा, अपना वक्त, सब कुछ दिया, लेकिन उसे शिफा ना हुई। और लेकिन जब उसने अपने दिल में ये ईमान रख लिया कि अगर वो यीशु को छू ही लेगी तो उसका रोग, उसकी बीमारी जाती रहेगी। और उसके ईमान के बायस खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ठीक उसी के बाद हमने पिछले सबक में सीखा था, 10वें मौजजे में, कि दो अंधे ये पुकारते हुए यीशु मसीह के पास आए कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये सवाल किया कि क्या तुम एतकाद रखते हो, क्या तुम ये यकीन करते हो कि मैं तुमको शिफा दे सकता हूं। उन्होंने कहा हां खुदावंद। तो उन दोनों अंधों की आंखों को, जो जन्म के अंधे नहीं थे, जो गुनाह के बायस अंधे नहीं थे, हो सकता है मुल्की हालात या कोई हादसा उनसे पेश आया हो, उनकी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह ने खोल दिया। और वो इर्द गिर्द के इलाकों में गए और जाकर यीशु मसीह की क्या करने लगे, शोहरत फैलाने लगे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगे कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया। आज हम 11वें मौजजे में देखेंगे। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील, उसका 9 बाप, हम उसकी 32वीं आयत से पढ़ेंगे और इस हवाले में से उस मौजजे को सीखेंगे जिसमें खुदावंद यीशु मसीह एक गुंगे को, जिसमें बदरू थी, उसे क्या करता है, शिफा देता है, रहाई देता है और उसे बोलने की कुव्वत और ताकत फिर बख्शता है। मत्ती की इंजील, उसका 9 बाप, उसकी 32वीं आयत में यूं लिखा है, जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गुंगे को, जिसमें बदरू थी, उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गुंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि मैं के इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता रहा और हर तरह की बीमारियों और हर तरह की कमजोरियां दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानत जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। बस उसने अपने शिगिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। इस वाक्या में जब वो दो अंधे बाहर जा रहे हैं तो लोग क्या लेकर आए हैं? एक गूंगे को जिसमें बदरू है, उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं। पहली बात हम ये यहां पर गौर करेंगे। दूसरी बात, जब वो गूंगा शफा पा गया, रहाई पा गया, बदरू उसमें से निकल गई, तो लोग ताज्जुब करने लगे, हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ऐसा पहले कभी भी इसराइल में नहीं हुआ। और तीसरी बात यहां पर देखते हैं कि फरीसी खुदावंद यीशु पर इल्जाम लगाते हैं, वो खुश नहीं हुए, वो खुश नहीं हुए, बल्कि अल्जाम तराशी करते हुए यीशु पर बुड़बड़ाते हैं और अल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि वो बदरूहों की ताकत से क्या करता है, लोगों को शिफा देता है और बदरूहों की ताकत से बदरूहों को निकालता है। और चौथी बात, यीशु मुसलसल तौर पर अपनी खिदमत को सरंजाम देता रहा जिस मकसद के लिए वो आया। और पांचवी बात हम यहां पर देखते हैं, लोगों की हालत, कि लोगों की हालत खस्ता है, लाचार है, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई रहनुमाई देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। और जब यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ को देखता है तो यीशु को उन पर तरस आता है और यीशु मसीह फिर कहता है अपने शिगिर्दों से कि मालक से, खुदा बाप से दुआ करो कि वो, दरख्वास्त करो कि वो, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज हम गौर करेंगे इन बातों पर। पहली बात कि लोग उस गूंगे को, ये गूंगा, हमें बाइबल मुकद्दस नहीं बताती कि ये पदेशी गूंगा था, क्या इसके साथ हुआ, लेकिन यहां पर ये गौर की बात है कि लोग एक गूंगे को लेकर आए हैं जिसमें बदरू थी। सो इस गूंगे की जो गूंगेपन की वजह थी वो क्या थी? बदरू थी। इस दुनिया में बहुत सी बदरूहे हैं, लालच की, चोरी की, कत्ल की बदरूहे, बेहयाई की बदरूहे, नाफरमानी की बदरूहे, शैतान की वो बदरूहे जो बहुत से भयानक और गंदे काम करती हैं, जिसे शैतानी और गंदी बदरूहे कहते हैं, जिसे इंसानी हवस के जो लोग शिकार हो जाते हैं, जिसमें बदरू बढ़कर घुसकर क्या करती है, उनको इस्तेमाल करती है, जिद्दीपन की बदरू, बदरूहों के बहुत से काम हैं, बहुत से वो तरीकों से इंसानों को क्या करती हैं, गुमराह करती हैं, जैसे ए बीमारी की बदरू, लाचारी की बदरू, फालज की बदरू, बहुत सी बदरू हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें इनका जिक्र मिलता है। आपको याद होगा कि एक कुबड़ी औरत में, जिसे बदरू ने, शैतान ने गिरफ्तार किया हुआ था बहुत सालों से, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी? उसे शिफा दी। फिर आगे चलकर हम देखेंगे एक गूंगे को और अंधे को जिसमें बदरू थी, उसे खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी। सो यहां पर एक गूंगे को जिसमें बदरू थी, इस गूंगेपन को, इसकी वजह क्या थी? बदरू। ये पदेशी गूंगा नहीं था, ना ही इसकी जबान काटी गई थी, ना ही किसी ने इसके मुंह में अंगारे या आग डाली थी, ना ही इसकी नसें क्या थी, मर गई थी कि वो बोल नहीं सकता था। इस गूंगे को जो गूंगे की, गूंगेपन की वजह थी वो क्या थी? बदरू थी। क्योंकि लिखा है जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो 32वीं आयत, लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। सो इस गूंगे को लोग लेकर आए हैं। यीशु मसीह के तमाम मौजजात में हम देखेंगे कि लोग किसी ना किसी बीमार को, जैसे उस फालज के मरीज को जिसके लिए उसके दोस्तों ने, उन चार लोगों ने छत को अधेड़ दिया और उसे उतारा। और यीशु मसीह ने उसके लाने वालों के ईमान को देखकर क्या की, उस बंदे को जो फालज का मरीज था क्या दी, शफा दी। सो यहां पर इस गुंगे को लेकर आए हैं। आज मेरा सवाल यह है कि क्या हम उन बीमारों को, लाचारों को, गुंगों को जो बोल नहीं सकते, हमें नहीं पता कि कितने अरसे से ये गुंगा बोल नहीं सका, उसके दिल की बहुत ख्वाहिश होगी कि वो कहे पानी, रोटी, मां, बाप, या उसके दिल की ख्वाहिश रही होगी जब वो गुंगा था, बदरूहों में गिरफ्तार था, वो बेबस और लाचार था, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, वो बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था, उसके दिल की बहुत सी ख्वाहिशें होगी। सो इस गुंगे को लोग यीशु के पास लेकर आए। हमें भी आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको यीशु के पास लाने की जरूरत है। यीशु के पास लाने के लिए यीशु मसीह किसी से, किसी के मजहब को नहीं देखता, वो उनकी रूहों पर निगाह करता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अमरीकी हो, चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी है, खुदा ने दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत की है कि उसने सबके लिए अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को यीशु के पास लेकर आए। सो लोग इस गुंगे को यीशु के पास लेकर आए और क्या हुआ, गुंगे को रहाई मिली। जब हम ऐसा करेंगे तो लोग निजात पाएंगे, शफा पाएंगे, रहाई पाएंगे। और जब लोग रहाई पाएंगे, वो कैसी भी बीमारी हो, तो क्या होगी दूसरी बात, लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि इसराइल में कभी ऐसा नहीं देखा गया। आपके शहर में, आपके मुल्क में, आप जब यीशु को, लोगों को यीशु के पास लेकर आएंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत से मौजजात याद हैं, जब हम दुआ करते थे तो लोग लेकर आते थे बीमारों को और बीमार शिफा पाते थे, बेअलाद अलाद पाते हैं, और बहुत सी बीमारियां, रसौलियां, सर दर्द और दूसरी तंगियां दूर करता है यीशु मसीह। हमें अपने घरानों को, अपने मां बाप को, अपने बहन भाइयों को यीशु के पास लेकर आने की जरूरत है। हमें गुंगों को, बीमारों को, लाचारों को देखकर उनसे मुंह नहीं मोड़ना, उनको देखकर ये नहीं कहना ओह मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, नहीं, बल्कि उनको देखकर उनके लिए दुआ करनी है। अगर आपने अपनी जिंदगी में गुंगों का मजाक उड़ाया है तो उस बात को भूलकर उन गुंगों को देखते हुए उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। उन गुंगों को बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह आपको शफा दे सकता है। और जब ऐसा होगा तो लोग ताज्जुब करेंगे, हैरान होंगे, परेशान हो जाएंगे कि ऐसा पहले कभी भी देखने में नहीं आया। तो तीसरी बात क्या देखते हैं, बहुत से लोग ताज्जुब करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, तमजीद करेंगे, खुदा के हुजूर झुक जाएंगे, जय जय के नारे लगाएंगे। लेकिन बहुत से जो मजहब परस्त लोग हैं, जो चाहते हैं कि लोग खुदा के पास ना जाएं, उनकी तरफ ध्यान दें, उस दौर में फकी फरीसी ऐसे ही लोग थे, जे शरा के आलम, इलम रखने वाले, मूसा की शरीयत के बारे में बहुत ज्यादा समझदार और कलाम को समझने वाले लोग थे। लेकिन ये क्या चाहते थे, फकी फरीसी क्या चाहते थे, कि लोग उनके पास आए, लोग उन पर भरोसा करें, लोग उनके मुताहद रहें, ना के सीधे खुदा के पास जाएं। आज आपके दौर में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बहुत दफा अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत दफा पादरी हो सकता है, कोई मुबशर हो सकता है, कोई नौजवान लड़का या लड़की हो सकता है, कोई झूठा नबी हो सकता है, झूठा उस्ताद हो सकता है, जो कहता है कि सिर्फ मैं कर सकता हूं और कुछ नहीं कोई कर सकता, और यीशु के पास आने के बजाय वो क्या कहते हैं, हमारे पास आओ। जादूगर हो सकते हैं। सो फकी फरीसी क्या कहते हैं, यीशु पर अल्जाम लगाते हैं और वो खुश नहीं है। वो खुश नहीं है कि इस बेचारे को जो बोल नहीं सकता था शिफा मिली है। वो खुश होने की बजाय क्या करते हैं, الزام لگاتے ہیں۔ میری اپنی زمینی خدمت میں جب سے میں نے خدمت کو یسوع مسیح کو شروع کیا ہے، اس کی پرستش کرنی، اس کی گواہی دینی، بہت سے لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں پادری صاحب خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ کریں اور لوگوں کے پاس جائیں۔ بہت سے لوگ الزام لگائیں گے، وہ خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، دوسرے جو کرتے ہیں ان سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ جو بھی خدمت کر رہے ہیں، سنڈے سکول کی، تعلیم کی، بچوں کی دیکھ بھال، بیووں کی دیکھ بھال، صبح کا چرچ میں جانا، لوگ اگر آپ سے خوش نہیں ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ٹھہرتا، اگر میں انسانوں کی بات کو سنتا تو آج جو خدمت 170 سے زیادہ لوگ، بچے کیا پا رہے ہیں؟ تعلیم پا رہے ہیں، تقریباً 12 لوگ مختلف، مہانہ ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے اس خدمت کے وسیلہ سے، یتیم اور بہت سے دوسرے لاچار، تقریباً 18 بچے ہیں جن کی زندگیوں میں برکت کا کام جاری ہے۔ ہزاروں کے حساب سے لوگ بائبل مقدس کو پا رہے ہیں۔ اگر میں ان کی لوگوں کی آوازوں کو سنتا، الزاموں کو سنتا، تو آج ہو سکتا ہے کہ میں صرف پاکستان ہی میں ہوتا، میرے 10-20 بچے ہوتے، اور پھر وہی پرانی زندگی، وہی نشیور باتیں، وہی لاچاری کی باتیں اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج خدا کی آواز کو سننے سے چرچ، سکول، 316 گھر، اور پھر ہزاروں کے حساب سے لوگ کیا پا رہے ہیں؟ برکت، پاکستان میں اور غیر ملک میں بھی۔ اس لیے ہمیں یسوع کی آواز کو سننا ہے، دوسروں کی آواز کو نہیں سننا۔ سو یسوع مسیح کیا کرتا رہا؟ چوتھی بات، یسوع شہروں میں، گاؤں میں پھرتا رہا اور عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کا پیغام کی منادی کرتا رہا اور ہر طرح کی بدروحوں اور بیماریوں سے اور کمزوریوں سے بھرے ہوئے لوگوں کو کیا کرتا رہا؟ شفا دیتا رہا، رہائی دیتا رہا۔ یسوع مسیح کو کوئی بھی بات روک نہ سکی۔ فریسیوں کے الزام، فریسیوں کا دھمکانا، فریسیوں کا چپ کرانا، اس کی ہمیں خوبصورت مثال ملتی ہے جب پطرس اور یوحنا یسوع مسیح کی منادی کر رہے تھے، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو اعمال کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے، جب غالباً اس کا پانچواں باب دیکھتے ہیں تو پانچویں باب میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، اس کی 29 آیت سے جب پڑھتے ہیں، یہاں پر پطرس اور رسول جب یسوع مسیح کا نام لے کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں، اور لوگ جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، وہ نجات پا رہے ہیں اور خدا کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہاں بھی فقیوں، فریسیوں نے ان سے کہا، بدماشوں کو بلا کر کہا کہ تم یہ نام لے کر منادی نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے کہا 29 آیت میں لکھا ہے، اعمال 5 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، پطرس اور رسولوں میں جواب میں کہا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار دیا تھا، اسی کو خداون نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے داہنے ہاتھ سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں اور روح القدس بھی، جسے خدا نے ہم انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہمیں روح القدس کی بات کو ماننا ہے، انسانوں کے پیچھے نہیں چلنا، اور یسوع مسیح نے ایسا ہی کہا۔ 35 آیت میں لکھا ہے، وہ شہروں میں، گاؤں میں بیماروں کو، لاچاروں کو، حالانکہ فریسی کہتے ہیں کہ وہ بدروحوں کی قوت سے یہ کام کرتا ہے، یسوع مسیح نہ رکا۔ ہمیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں، چاہے آزمائش ہو، چاہے لوگ آپ پر باتیں بنائیں، چاہے لوگ کہیں آپ یہ پیسے کے لیے کرتے ہو، آپ اس کے لیے کرتے ہو، ان سب کی باتوں کو چھوڑ کر آپ صبح چرچ اس لیے جاتے ہو کہ آپ زیادہ لوگوں سے روحانی ہو۔ ہمیں ہر روز اپنا دن خداوند یسوع مسیح کے نام سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، جیسے داؤد کہتا ہے کہ صبح، دوپہر اور شام میں تیری فریاد، تجھ سے فریاد کروں گا۔ دانیل صبح، دوپہر اور شام خداوند کے حضور جھکتا تھا، यसु मसीह सुबह दोपहर शाम अपने बाप के हजूर झुकता था ताकि हम उससे सीखें। और जबूर नवीस कहता है कि मैं अपनी हर सुबह को तेरे नाम से शुरू करता हूं। यसाया नबी कहता है यसु के बारे में नबूत करते हुए कि वो शिगिर्द की तरह हर सुबह अपने कान मेरी तरफ लगाता है और मेरे अहकाम पर क्या करता है, चलता है। आपको और मुझे रुकना नहीं, क्योंकि पांचवी बात यसु मसीह यहां पर देखता है लोगों की हालत, उसको उस पर तरस आता है और यसु मसीह अपने शिगिर्दों से कहता है कि फसल बहुत है, लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बताने वाले थोड़े हैं। इसलिए आपको और मुझे उस फसल के लिए जो बहुत ज्यादा है जाने की जरूरत है, दिन रात यसु की गवाही देने की जरूरत है। इसलिए यसु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा तो उस पर तरस आया, क्योंकि उनकी हालत इस तरह है कि उनका कोई चरवाहा नहीं। बहुत से गांव हैं, बहुत से शहर हैं, बहुत से इलाके हैं, बहुत सी जिंदगियां हैं जो बोल नहीं सकती, जो बीमारी में हैं, जो लाचारी में हैं, और सबसे बढ़कर वो गुनाह की गिरफ्त में हैं। उनको आजादी देने के लिए आपके पास वो पैगाम है कि खुदावंद यसु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी मुफ्त मिलती है। आए हम दुआ करें ताकि हम भी कहें कि खुदा बाप फसल बहुत है, मुझे भेज। ये साया की तरह कहें कि मुझे भेज ताकि मैं तेरा कलाम, तेरी गवाही लोगों तक दूं। और कहें कि खुदा बाप अपने जलाल को, अपनी कुदरत को मेरे साथ भेज ताकि लोग तेरी मौजूदगी का इनकार ना कर सके। खुदावन खुदा अपना जलाल जाहिर कर। आए हम दुआ करें। खुदा बाप आज के पैगाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे और ये पैगाम बेतासीर ना लौटे। हम गुंगों के लिए खुदाम खुदा तेरी राह तैयार करने वाले बने, अंधों के लिए खुदावन तेरे रोशनी के पैगाम को देने वाले बने, और तू है जो निजात और शिफा देता है। यीशु के नाम में हम सबको उस बड़ी फसल के लिए इस्तेमाल कर ताकि मजदूरों की तरह तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।